घर में अपराह्न दोपहर के बाद में कृष्ण गायों को लेकर के घर में गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं, ये तो अपराह्न है। मैया कैसा उनकी आरती उतारती है और कैसे कृष्ण गोदोहन इत्यादि के लिए जाते हैं, ये तो हुआ अपराह्न लीला का चिंतन। वैसे भजन राज्य में रुचि उत्पन्न होने के बाद में वही रुचि जबकि गाढ़ी हो जाती है तो वो कृष्णा शक्ति कहलाती है। रुचि दो प्रकार की होती है, एक वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और दूसरा होता है वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी। यदि प्रवचन के समय में गला खूब मधुर हो और इधर उधर की बात कुछ लगाए और साथ साथ में वैसे ही ताल स्वर से यदि कीर्तन हो तो लोगों को रुचिकर होता है, साधारण लोगों को। अथवा यदि ठाकुर जी का श्रृंगार खूब अच्छी तरह से हो तो हजारों लोग आएंगे, और यदि वही ठाकुर जी रहें मलिन वस्त्र इत्यादि हों, तड़क भड़क न हो, अच्छा मंदिर न हो तो लोग नहीं आए। तो जिनकी रुचि ऐसी अभी है जो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षित प्रवचन में मधुर स्वर से गले से कुछ कीर्तन करें, इधर उधर की रुचिकर बातें बतलाएं, तब तो कहीं जैसे यहाँ से नवदीप से बंगाल से या कल दिल्ली से बहुत अच्छे प्रवचन करने वाले हैं तो लोग जुट जाएंगे। और यदि नहीं रहेगा खूब उच्च कोटि के महाविद्वान भी हों, तत्वविद हों, रसिक भी हों, यदि तड़क भड़क नहीं है तो लोग नहीं आए, जिनकी अभी रुचि ऐसी नहीं है। कीर्तन में सुंदर मृदंग बजाने वाला और सुंदर गले का हो और अच्छी तरह से कीर्तन कर रहा हो, गंदा कीर्तन कर रहा है तभी लोग आएंगे, और अच्छा कीर्तन करने वाले उच्च कोटि का कीर्तन हो, नरोत्तम ठाकुर के पद भी हो या भक्ति विनोद ठाकुर के, तब तो जुटे। किंतु यदि गले में स्वर नहीं है तो लोग नहीं आए। इस स्थिति को कहते हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा, वस्तु की वैशिष्ट की अपेक्षा रुचि। ये सब सारी चीज़ें निष्ठा और रुचि भजन की होती है, भजन में ही रुचि, भजन में ही निष्ठा, वस्तु में नहीं, तत्व में नहीं, कृष्ण में नहीं, केवल भजन तक ही सीमित रहेगा, निष्ठा हो अथवा रुचि हो। वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी, वस्तु अर्थात जो कीर्तन करते हैं वो गले में स्वर हो न हो, उसके साथ में मृदंग हारमोनियम तबला इत्यादि हो न हो। परीक्षित महाराज जी किस तरह से हरिकथा सुनकर सुना रहे हैं, और परीक्षित महाराज जी उच्च कोटि के भक्त हैं, उनको रुचि क्या, आसक्ति क्या, आसक्ति से ऊपर में चले गए हैं। यदि वो दिखला भी रहे हैं, अभिनय भी कर रहे हैं बद्ध पुरुष जैसा, तो भी आसक्ति से कम नहीं। तो उस समय में परीक्षित महाराज जी कैसे सुन रहे हैं, चाहे गले में स्वर हो न हो, वहाँ पर हारमोनियम बजती होगी, तबला या मृदंग बजता होगा, वहाँ पर तत्वयुक्त भागवत की कथाएं होती थी, तत्वपूर्ण वदन्ति तत्वविदस्त तत्व संस्कृत भाषा में ही, उसकी व्याख्या यही व्याख्या है, ये तो वेदांत की व्याख्या है ना, इसलिए श्रीमद्भागवत ये व्याख्या ग्रंथ है, इससे अधिक नहीं बोले होंगे, यही बहुत है। अब आजकल उसको नहीं समझ रहे हैं इसलिए उसकी व्याख्या टीका की जरूरत हो रही है। इसलिए वस्तु की वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं करती जो रुचि, उसको वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय कहा जाता है। ठाकुर का श्रृंगार हो न हो, कीर्तन में स्वर ताल लयमान हो और न हो, पद ऊंचे होने चाहिए, भाव और विचार उन्नत होने चाहिए, तो वो बड़ी प्रेम के साथ में श्रवण करता है। हरिनाम सुनते ही गदगद हो जाता है, चाहे कोई भी करे। गांव वाले गौएं चरा रहे थे और महाप्रभु जी जा रहे हैं संन्यास लेने के बाद में, महाप्रभु वृंदावन आने की चेष्टा कर रहे और नित्यानंद प्रभु जी ने कहा कि एक सन्यासी अभी आएगा, तुम हरे कृष्ण करना, गौयाँ चराना, पूछे तो बतला देने, जैसे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन पास है। ये क्या चीज़ है? ये तो रुचि तो है ही है, रुचि के बाद में आसक्ति, प्रेम, स्नेह, महाभाव, महाभाव की अवस्था तक महाप्रभु की है, इसलिए उनको ये सब भाव हो रहे हैं। इसलिए जिनको ऐसी रुचि हो गई है, हरिनाम सुनने से गदगद हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, चित्त द्रवित हो जाता है, तो समझिए ये गाढ़ी रुचि हो गई। ये वस्तु के वैशिष्ट्य की अपेक्षा नहीं करती, बस वस्तु को देखते ही। श्री विग्रह देखा, जगन्नाथ जी को देखा, वही जगन्नाथ जी को हम लोग देखते हैं कुछ नहीं होता, और महाप्रभु जी ने देखा देख करके ब्रजेंद्रनंदन को, प्रतिमान है ब्रजेंद्रनंदन, ब्रजेंद्रनंदन की बंसी नहीं देखी, बंसी देखी उनमें, बंसी है, बंसी नहीं है, गोल गोल आंखें हैं, मयूर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने देखा भाव नेत्र से उन्होंने देखा। इसलिए ठाकुर जी को नंगा रखो, कन्यावाह भले बने हो नाथ, कित गई आपकी मुरली और कित गई बंसी और कहाँ गए आपके कपड़े, आज तो बड़े भले विराजमान हो रहे हैं, नंगे में ही देखो, बस उसी को देख करके मोहित हो जाएंगे। फटे पुराने मैले कपड़े हैं तो उसी को देख करके भाव विभोर हो जाएंगे। इसलिए वस्तु के वैशिष्ट्य की अपेक्षा नहीं रहती। कीर्तन में भी मृदंग ताल इत्यादि के तरफ में उनका ध्यान नहीं जाता, उनका ध्यान कहाँ जाता है? गोपीनाथ मम निवेदन, चाहे ताल से हो, स्वर से हो या जैसा भाव देखें, हे गोपीनाथ मैं इस संसार में नरक में डूब रहा, यदि आपने दया नहीं की तो आपकी ठाकुराई कहाँ है, उलाहना दे रहे हैं, बस सुना और भाव विभोर। गीत गोविंद के पद कोई लड़की गा रही है और कंडे बीन रही है और जगन्नाथ जी मंदिर से निकल करके आ गए और कांटों की तरफ में दौड़े, महाप्रभु जी भी ऐसे ही दौड़े उसके तरफ में, गीत गोविंद दवाने वाले के पास, गोविंद जी उनको पकड़ नहीं सके, अरे ये लड़की है, लड़की है? महाप्रभु जी का ध्यान एक बार, लड़की आज यदि मैं छू देता तो आज मैं जमुना गंगा जी वहाँ समुद्र में डूब करके मर जाता। ये सब चीज़ें हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा। कीर्तन का पद ही हमारे नरसिंह महाराज जी थे, बावन महाराज जी के चाचा जी, उन्होंने कहा जैसे मैं अभी नवयुवक था और वो नक्शे इत्यादि बनाते हैं ना कोर्ट में, उस कोर्ट में ये उस प्रकार के अमीन या अमीन के ऊपर वाले कुछ थे, तो ये लोग बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। वो कीर्तन क्या था, संसार संसार करी नीचे जे लोकार लाभ ना हो लो किछु घटी लगे, पिछेर संसारी छायाबाजी प्राय यहाँ ते ममता करी। इसका तात्पर्य है जैसे वो जा रहे थे कहीं और ये वैष्णव लोग कुछ चार पांच नौ युवक लोग गा रहे थे कीर्तन, कीर्तन मृदंग वाले भी वैसे ही मृदंग जानते हैं तो प्रचार के लिए गए हैं, और कीर्तन करने वाले भी ऐसे नहीं गा रहे थे, ये संसार कैसा बेकार का छायाबाजी प्राय, जैसे वो फुर्र उड़ाते हैं ना, अभी दिवाली होली में उड़ाएंगे वो क्या कहते हैं, आताशबाजी की आतिशबाजी, वो उसमें आग नहीं होता, फुलझड़ियाँ उसमें लग जाती है, आकाश में क्या क्या बनाते हैं, तो वो बेकार का है, उसमें आग था कुछ नहीं है। ऐसे ये संसार देखने में बड़ा सुहावना है, किसके लिए संसार करें? जिसके लिए कर रहे हैं वही नहीं चाहता आपको। आप जिसके लिए कर रहे हैं वो आपको चाहता नहीं। एक कैसा संसार? आप किसी स्त्री के लिए करें अपनी पत्नी के लिए, और पत्नी दूसरे पर आ सकता है। बेटे के लिए करें, बेटा अपनी जब स्त्री आएगी तो उसमें आसक्त हो जाएगा, आपको पास में थोड़े आएगा वो, जब तक पंख नहीं उगे हैं तब तक। इसके बाद में ये संसार को छोड़ दें, ठटरी पटरी रह जाएगी, वो भी जला देंगे, खत्म हो जाएगा। फिर किसके लिए ये करें? गर्द भैर मतामी करी परिश्रम, गधे की नाई हम परिश्रम करें। किसके लिए कर रहे हैं? गधे जैसा सवेरे से शाम तक किसके लिए कर रहे हैं? जिसके लिए कर रहे हैं वो तुम्हारी एक भी इतनी भी कृतज्ञ नहीं होगा। किस लिए कर रहा है? कोई भी कृतज्ञ नहीं होगा, बल्कि वो एहसान कहेगा कि हमने ये कुछ कर दिया, तो उसी का कहा कि बाप और माँ को हमारा एहसान होना चाहिए। इसलिए किसके लिए करें? और अंत में मुर्दा घाटी में जाएंगे और जला दिए जाएंगे। कुत्ता कहेगा दूसरे कुत्ते को, ये मेरा है, उसके लिए लड़ेंगे। गिद्ध कहेगा जो मेरा है, कुत्ते कहेंगे ये मेरा है, कौवे कहेंगे ये मेरा है, ये किसका है? इसलिए ये सब चिंता करके भगवान का भजन। हमने देखा, उन्हें कह रहे थे नरसिंह महाराज, सुनकर मैं खड़ा हो गया, और भी कुछ लोग जा रहे थे खड़े थे, मैं भी खड़ा हो गया। और उनकी ये या कीर्तन की जो ध्वनि है, ध्वनि मैंने क्या भाव, अरे ये तो सच कह रहे हैं। बस उसी दिन ही छोड़ दिया घर। कहाँ से आए हो, क्या है, अब पूछ करके तब फिर वो गुरु जी से मिले, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले, और उनको बचने को छोड़ कर सदा के लिए घर छोड़ दिया और भगवान का भजन कर, अंतिम जीवन तक भगवान का भजन, अंतिम जीवन तक यहाँ थे, हमने उनकी जहाँ तक हो सकी सेवा की। इन सब सेवाओं का फल ही हम देख रहे हैं। अनायास ही मैं ये संसार के बृहद संसार में मैं जो चाहता हूँ वही हो रहा है। देखता हूँ कि ये भी रुपए पैसे आ रहे हैं, घर बन रहा है, वहाँ पर मठ बन रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, नहीं आज हमारा जीवन बर्बाद हो गया। और जगत के कहने आप इतना विचार कर रहे हैं, इतना ऐसा हो रहा है, हम मर रहे हैं, आप कहाँ भजन करने का समय, कहाँ भी भजन किया। ये आप लोग निष्ठा के बाद में रुचि हो तो कैसे, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी, उसके अंदर में जो क्या कहते हैं उसकी भाव है कीर्तन का, उसको लो शब्द में, जो शब्द का तो क्या हम कहते हैं उसको भूल गए हैं, नहीं भाई खैर अभी मतलब समझ गए, उसका जो भाव था उसको ग्रहण करने की चेष्टा करो, कीर्तन करो, किंतु कीर्तन में स्वर लहरी के तरफ मत जाओ, उसके साथ साथ में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो स्वर लहरी के बदले उसके भावों को में प्रवेश करने की चेष्टा करो, इसका तात्पर्य क्या है, तब तो भजन हुआ कीर्तन हुआ, और नहीं तो वो ताल स्वर लय मान के रूप में रह जाएगा, उसका कोई तात्पर्य नहीं होगा। इसके बाद में जब गाढ़ी ऐसी रुचि हो जाएगी तो आसक्ति हो, ये बिना रहा नहीं जाएगा। उस समय में शरीर अस्वस्थ होने पर भी, सो जाने पर भी भगवान का नाम चलता रहेगा, भगवान की स्मृतियाँ आएगी, लीलाएँ कथाएँ, इस समय में अनायास ही, उस समय में परिश्रम नहीं लगेगा हरि कथा सुनने में, हरिनाम करने में परिश्रम नहीं लगा, अपने आप आसानी से ये चीज़ें हो जाएंगी। अभी हम हरिनाम करते हैं, 15 मिनट के बाद में हम थक जाते हैं, और उस समय नहीं थकेंगे, अनायास नहीं इच्छा अपने आप। हमारे एक महाराज जी थे जो हमको घर से निकाल करके मठ में लाए थे, मधुसूदन महाराज, वो बीमार जब होते थे तो बस गोपीनाथ मोहम्मद उनका ताल स्वर चढ़ता था, और जब तक बुखार नहीं उतरता तब तक उनका कीर्तन ये गोपीनाथ मोहम्मद निवेदन सुना, अथवा ऐसे ऐसे कीर्तन जो थे वो करते थे, उनको डॉक्टर मना करेंगे सब कुछ है, वो माने नहीं, वो तो चल रहा है।
जितना बुखार थे 104 यदि अधिक हो गया तो अधिक स्वर में चलेगा। ये अद्भुत अद्भुत बातें हमने भी देखी है। तो इस तरह से जब गाढ़ी रुचि होने के बाद में आसक्ति होती, आसक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक वस्तु के प्रति, एक भजन के प्रति और एक भजनीय के प्रति। पहले ये भजन के प्रति दे रहे हैं, इसके बाद में भजनीय के प्रति देंगे। भक्ति मनोज ठाकुर बड़े भारी वैज्ञानिक हैं। ये पुस्तक को साधारण देखता है किंतु ये वैज्ञानिक भित्ति पर, भजन के विज्ञान पर ये प्रतिष्ठित है। इसको अनुशीलन करके यदि हम लोग भजन करेंगे तो सहज ही भजन हम लोग करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो साधारण आदमी समझते नहीं हैं, उनको वही समझेगा जो कि भजन कराएंगे। इसलिए पहले देंगे भजन के प्रति आसक्ति और इसके बाद देंगे भजनीय जो कृष्ण हैं उनके प्रति, वो आसक्ति जो भजन के प्रति थी वो आकर के इधर लग जाएगी, किधर, कृष्ण के प्रति। और कृष्ण के प्रति लगने पर भी भजन में भी आसक्ति पूर्वक रही और फिर इस पर भी आ गई। ऐसा नहीं कि भजन की जो प्रवृत्ति थी वो भजनीय में आने से ये भजन के प्रति खत्म हो गई और आ गई भजनीय के प्रति, कृष्ण के प्रति, ऐसा नहीं। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अथवा साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वार्षिक श्रद्धा सेवन, ये पांचों के प्रति रहेगी या 64 में से अपने भावानुकूल जो होगा, भाव के अनुकूल और क्या क्या जो है ना, पाँच भाव मय भावानुकूल भाव, तब इसके बाद में भाव संबंधी। जिनको इनका ज्ञान नहीं है वो क्या भजन करेंगे, माला लेकर के बैठने से नहीं हो जाएगा। इस सब चीज़ों को जान करके भजन करें। साधारण तरह से 99% लोग आते हैं ऐसे ही संसार से, इस मूड मोए क्या है, नारी मुई नारी मुई संपत घर नाशी, और इसके बाद में मूड मुड़े भय सन्यासी। 99% इस तरह से आते हैं। स्त्री मर गई, घर की संपत्ति नष्ट कर डाली, अब देखा कोई उपाय नहीं है, पेट कैसे भरेगा, तो सन्यास ले लेंगे, तो हर बार में जाएंगे तो अपने आप पंजाब की महिलाएं आएंगी और लूची पूड़ी हम खाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। अधिकांश लोग इस तरह से आते घर से तबाह होने के बाद। बहुत कम रेयर ऐसे हैं घर में सब प्रकार की व्यवस्था रहते हुए भी, संपन्न रहते हुए भी, विरक्त होने के बाद में, भगवान के भजन के प्रति आसक्ति होने के बाद में घर छोड़ते हैं। भगवान के प्रति आसक्ति रुचि नहीं और घर छोड़ दिया तो क्या होगा, घर छोड़ करके आएगा वो आदमी तो यहाँ पर कहीं से जूते चुरा करके और उसका बिजनेस करेगा, इधर से उधर से कहीं ना कहीं से कुछ ले आएगा और ले आकर के मठ में है इसीलिए केवल जीवन निर्वाह करने के लिए, और वही सब इधर से उधर, घर का भी कोई चीज़, मठ का भी कोई चीज़, इधर का उधर ले करके किसी प्रकार से पैसा जमाने की चेष्टा करेगा। कोई कोई ऐसे सरल हृदय के होते हैं जो जैसे तैसे आ गए, मठवासियों का जीवन चरित्र देकर के सुधर जाएंगे, ये बात तो ठीक है, साधुओं का बहुत प्रभाव पड़ता है, किंतु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम, रेयर। उनका तो कल्याण हो जाएगा, किंतु जिनके अंदर में भी भोग की लालसा पक्की बनी हुई है और उन्होंने किसी प्रकार से बाध्य होकर के, स्त्री मर गई, घर भाइयों ने उनको मारपीट करके घर से निकाल दिया, और ऐसे जबकि घर में कोई ऐसी कोई बात हो गई जो अब घर में नहीं रह सके और बाध्य होकर के आए हैं, उनके लिए वो आकर के यहाँ पर बिजनेस करेंगे, चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, उनको संभालना पड़ा भारी। सरल हृदय से जो आया है, जिसके अंदर में ये भावना है कि मैं भगवान का भजन, उसके लिए तो इसलिए बहुत दिनों तक मठ में रहने पर भी लोगों की चित्त वृत्ति संभल नहीं पाती, इसलिए संभल करके विचार करके तुम लोग भगवान का भजन। इसलिए आसक्ति यदि हो जाए भगवान के भजन में, अंततः ये उपलब्धि हो, ये संसार दुखपूर्ण है, इसमें आज तक किसी ने सुख नहीं पाया, ये उपलब्धि हो जाए। तस्मात क्या है नहीं, कोई और एक दूसरा है नहीं, मैंने कर्मों के प्रति विरक्त हो करके तब वो गुरु की खोज करता है। परीक्षा लोकान कर्म चितान निर्वेद माया न सकता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरु में अवगत। जब ये देखेगा कि कर्मों का फल ये जो संसार है सब समय कंटकमय है दुखमय है, जब इसकी उपलब्धि होगी तब एक आदमी आता है। और दूसरा आता है जब घर में रहते हुए माता पिता इत्यादि के वैष्णव के संपर्क से रघुनाथ जी जैसे भजन की प्रवृत्ति कुछ हुई और भजन की प्रवृत्ति से उसको वैराग्य हुआ, ये भी उससे भी उत्तम है, ऐसे लोग भजन कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं भाई, जबकि स्त्री मर गई या स्त्री भी ऐसी मिली, काणी काली कुरूपा कलह प्रिया और क्या क्या है सब, कटु वचन रहता ऐसी गृहिणी मिली किसने है उसमें नाम कैसी है और रूपवती कैसी है, काली है काणी है एक आंखी दांत निकले हुए हैं काली एकदम और कठोर वचन सब समय बोलती है, तंग आ करके लोग छोड़ करके चले आते हैं, ये लोग भजन करना बड़ा भारी। दो प्रकार के जो पहले बतलाए वो लोग कुछ भजन करते, जिनको भजन संसार में रहते हुए कुछ आसक्ति हुई है कुछ रुचि हो गई है वो छोड़ करके आए, सहज रूप में उनका वैराग्य हो जाएगा और वो भजन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अधिकांश संपन्न घर वाले लोग कुछ शिक्षित हों नहीं हों, शिक्षित संभ्रांत घर के हों और उनका साधुओं का कुछ संग हुआ, पूर्व जन्म की स्वीकृति है, वो आकर के मठ में साधुओं के संग में बहुत जल्दी बदल जाते हैं। और जिनका ये नहीं आधार नहीं है, कौवे को हमने 50 बार साबन लगाया, एक कौवा था कैसा होता है काला होता है ना, उसको साबन मलते 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 उसको रगड़ रगड़ करके रोज स्नान कर क्या होगा। कोयले को तुम जितना भी साबन दो साफ करो क्या होगा, साबन भी काला हो जाए। एक उपाय है आग में डाल दो, यदि लाल हो गया जब तक लाल रहेगा तब तो काला नहीं रहेगा, अन्यथा जब ही आग निकल आएगी क्या होगा फिर काला का काला। एक कुत्ता था, ये पूंछ उसकी टेढ़ी थी, नौ मन घी खरीद करके लाया और बार बार उसको लगा रहा है सीधा कर रहा है फिर क्या हुआ छोड़ दिया फिर ऐसे हो गया। यदि कुत्ता मर गया तब तो सीधा हो जाएगा, इसके पहले नहीं। ऐसे ही इसलिए आसक्ति तो बहुत दूर की चीज है, इसलिए एक आसक्ति हुई भजन करते 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 अनर्थ तो कुछ काफी हद तक दूर हो गया और उसकी गाढ़ी रुचि हो गई। अब बिना वो नाम का रह नहीं सकता, दिन में रात में स्वप्न में जैसे तैसे सब समय भगवान का नाम भजन करता रहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि। भजन में तीन प्रकार के शिष्ट हैं, कौन, श्रवण कीर्तन। रागानुगा भक्तों का श्रवण तो हो चुका है इसलिए उसकी रागानुगा में प्रवृत्ति हो गई है, इसलिए श्रवण को बाद देकर के स्मरण कीर्तन और उनका प्रधान। उन श्रवण और कीर्तन में पहले कीर्तन प्रधान होगा, कीर्तन प्रधान होते 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 कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होगा और सही काले निर्जन भजन ये सब विधियाँ हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले भजन के प्रति आसक्ति और इसके बाद में भजनीय कृष्ण के प्रति आसक्ति की बात की, इस क्रमानुसार से चला। जिन लोगों को ये भलाई नहीं है उनको साधु संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, वो क्या करते हैं दो दिन रहे मन खराब हो गया कुछ पाठ तो सुनेंगे नहीं, तो यहाँ से वहाँ चले वहाँ से वहाँ चले वहाँ से वहाँ चले, बस उनको रुचि भजन में नहीं है, साधु संघ के प्रति जानते नहीं है इसलिए। उनको तो अच्छा तरह से खाना चाहिए अच्छा चीज से पहनना चाहिए, दो दिन के बाद में फिर या दूसरी जगह रहे, सदगुरु के पास में रह नहीं सकते। और जिनको ऐसा है वे सदगुरु वैष्णव के साथ में रह करके इन सब की और प्रगाढ़ शिक्षा लेकर के आगे बढ़ेंगे। अनंद तनुज किंकर पति तम्मा विषमे भवा कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विषमया। भक्त जब इस स्थिति में आता है तो उसकी भगवान के प्रति ऐसी ही प्रार्थना होती है। चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षाष्टक के कौन सा श्लोक है, पंचम श्लोक में ये बताया, यह है क्या सिद्ध शरीर कैसे अब यहाँ पर आसक्ति होने पर आसक्ति की परिपक्व अवस्था में सिद्ध देह कुछ आभास शरीर हृदय में प्रकटित होता है। जिसने भजन नहीं किया और गोपियों का भाव ले लिया गुरु जी से, आज गुरु जी ने दे दिया, क्या भजन करेगा, इसलिए वो विधि नहीं है, वो सहजिया इत्यादि। इसलिए अभी से कोई गोपी भाव का चिंतन इत्यादि मत करना, और जिनको नींद आती है जरा तन करके बैठे तो अच्छी तरह से सो मत। हम अभी पूछते हैं बीच बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, आज नहीं बतला से कान पकड़ करके उठाएंगे, ये समझ लो। यदि इधर उधर किया मैं कब किससे पूछ दूंगा, कोई ठीक नहीं, मैं देख रहा हूँ ये कौन सो रहा है। अनंद तनुज किंकर महाप्रभु जी का है, हे नंद तनुज, हे नंद नंदन जसोदा नंदन, आपका यह किंकर मैं हूँ, मैं आपका किंकर, मैं संसार में विषम विषम भामानुपुत में, विषम माने क्या, भयंकर, बी सम सम नहीं
अथवा विस्मय,
अटलांटिक सागर के लहरों में पड़ा हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े क्रोकोडाइल हैं, बड़े बड़े घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, और इनको भी निगल जाने वाली वो मछलियाँ हैं, मछलियाँ जो जहाज़ों से टकराने से जहाज को भी उलाट दें, कितनी लंबी होती है, बड़ी बड़ी विशाल समुद्र में, और बड़े जहरीले सांप होते हैं, वायु के वेग से भी अधिक उसमें चलते हैं पानी में, उसमें तरह तरह के जानवर हैं, वहाँ पर धाराएं होती हैं गर्म पानी की, यदि उसमें पड़ गए तो जीवित नहीं बच सकते, और ये सब जानवर निगल जाने के लिए प्रस्तुत, ये संसार ऐसे ही है? इसमें हम पड़ा हुआ हूँ मैं विषम स्थिति में, और प्रभु और कोई उपाय नहीं है, कर्म ज्ञान इत्यादि जो साधन है इसको पार करने के लिए भवसागर को, वो कैसे हैं, जैसे समुद्र में एक आदमी कहीं डूब रहा हो अगाध समुद्र में, और तीर्ण का एक गुच्छा थोड़ा सा मिल गया सूखे कोई तीर्ण का, देखता किसी से ऐसे झपट करके पकड़ता मैं बच जाऊं, तो वो गुच्छा भी गया और वो भी गया, दोनों रसातल में डूब मरे। तो ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि के जो साधन है यही है, केवल भक्ति का यदि मिल गया जहाज, नाम का नौका, भक्ति की नौका मिल गई तो उसका स्मरण करने से ही आप पार हो जाएंगे। इसलिए ये प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोध नक्रमकरादि कवलीकृतस्य दुर्वासना निगृहीतस्य निराश्रयस्य, संसार समुद्र में नहीं डूबा, कोई भी नौका नहीं, कोई भी अवलंबन नहीं, काम क्रोध हम समझते कि हमारे मित्र हैं ये, मैं क्रोध के द्वारा उनको शांत कर दूंगा, काम और क्रोध, किंतु हमें ये डुबा देंगे, असहाय पड़ा इस अवस्था में, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है, रो रो करके यदि ऐसा हो, ऐसा होता नहीं साधारणों को, नहीं होगा, जब आसक्ति होगी तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसी प्रार्थना भी नहीं कर, पढ़ने से क्या होता, आप लाख बार पढ़िए सुनिए, भजन करते करते ये स्थिति आएगी तब उसके भगवान के लिए रोएंगे, प्रभु अपने चरण की कमलों की हमें अपनी धूली बना लीजिए, मैं आपके चरण कमलों की धूली, अपने चरणों से हमें झाड़ मत दीजिए, नहीं तो संसार सागर में और डूब जाऊंगा। इसलिए ऐसी प्रार्थना रो रो कर करता है, ऐसी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। और लोग चाहे रो रो करके सिर तोड़ करके मर जाएं, उनके परिजन भी रोते 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 मर जाएं, भगवान उसकी बात नहीं सुनेंगे। अपने कर्म के अनुसार में तुम इनका भोग कर रहे हो, मैं क्या करूँगा। यदि एक डकैत 10 लोगों का मर्डर करके आया और जज के सामने रोने लगा ये प्रभु हमको छोड़ दीजिए, उसकी मैया बाप उसकी स्त्री भाई बेटे परिवार के लाखों लोग आकर के रो रहे हैं, जज सुनेगा? एक साधारण इस जगत में जज ही नहीं सुनेगा तो प्रभु जो जजों के जज हैं वो क्या सुनेंगे। इसलिए शरणंग शरणागति हई बेजहार, सब लोगों की बात प्रार्थना नहीं सुनेंगे। जो सब प्रकार से भगवान के को आत्मनिवेदन कर चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं, शरणागत हो चुके हैं, उनकी प्रार्थना सुन। इसलिए हमारी आप अभी प्रार्थना सुनाने के योग्य नहीं है, ये लोग प्रार्थना सुनाने के योग्य हो गए हैं। ये पहले शरणागत हुए हैं, इसके बाद में गुरु से भजन किए हुए हैं, भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति हुई है, अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा आई है, निष्ठा के बाद में रुचि, इसके बाद में आसक्ति में पहुंचे, उसको पार करके आए, इसलिए इनकी प्रार्थना सुनेंगे, हमारी आपकी नहीं सुनेंगे। तुम ही लोग देख लो ये भगवान के प्रति तुम्हारी कितनी ये शरणागति है और कितनी निष्ठा है और अनर्थ दूर है, कैसे तुमको सुन। तुम रो रो के मर जाएंगे तभी उनका हृदय में करुणा नहीं आएगी। करुणा कब आएगी? इस स्थिति में श्रीमतानुस्वा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हेय भद्राणी विधुनोति हि सुहित सदा नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकि तदा रजस्तमो भावा काम लोभ आदयश्च जे चेत एतै अनाविद्धं स्थितं सत्ते प्रसीदति। ये सुखदेव गोस्वामी जी अभी प्रथम स्कंद में ही द्वितीय प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रारंभ में भी ये भागवत का सार बतला रहे हैं। किसको बतला रहे हैं? सुखदेव परीक्षित महाराज और उनकी सभा में बैठने वाले जो अधिकारी लोग हैं उनके लिए, अनाधिकारी लोग भी सुन रहे हैं, उनके तो काम की चीज़ ये नहीं। इसे जो अधिकारी व्यक्ति हैं उनके लिए ये बता रहे कैसे भजन होता है। श्रीमतान स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ये बतला रहे हैं। कृष्ण कैसे हैं? ये कृष्ण का विशेषण ये बतला रहे हैं। ओ कृष्ण बड़े दयालु हैं। यदि कृष्ण देखते हैं कि ये हमारी कथाओं को श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक रुचिपूर्वक और आसक्तिपूर्वक ये सुन रहा है और हृदय से उसको ग्रहण कर रहा है हमारी कथाओं को, तो कृष्ण बड़े दयालु हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन अपने कथाओं के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हृदय में कानों के माध्यम से आ जाते हैं। उनकी कथाएं, उनका नाम, उनका कीर्तन सब कुछ पुण्य माने यहाँ पर सुकृति से भी भक्ति समझो, बल पुण्य माने भक्ति, भक्ति को समझो, साधारण पुण्य के लिए नहीं कहा। इसलिए जो लोग भगवान की कथाओं को सुनते हैं, कृष्ण कहते हैं ओ मेरी कथा सुन रहा है, बस झट दास द्रवित होकर के उन कथाओं के माध्यम से कान के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और कितने प्रकार के अभद्र हैं, अभद्र माने अमंगलजनक, अमंगल माने क्या है, जितने प्रकार के अनर्थ हैं, जितने प्रकार के अपराध हैं, तुम्हारे बुरे कर्म फल हैं, बुरे कर्म फलों में भी एक एक से अधिक अधिक भयंकर हैं, जिसमें कि प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, अविद्या, पाप का बीज, सब कुछ नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट हो जाता है? मैंने कृष्ण करते हैं। और अपनी चेष्टा से तुम करोगे ये ऐसा भजन किए बिना लाख चेष्टा करो नहीं। इसलिए कृष्ण जब तक कि कान के माध्यम से हृदय में नहीं आएंगे और वो कृपा करके इनको हटाएंगे नहीं, तब तक तुम्हारे लाख प्रकार की चेष्टा से ये जो तुम्हारे अनर्थ हैं, अपराध हैं, पूर्व जन्मों का बुरे कर्मों का फल है, या पुण्य का जो फल है जो भजन में बाधक है, भाई ये अपने आप नहीं है। इसलिए प्रीति के साथ में मैं ग्रहण करूँगा, इस नियत से सुनिए इन कथाओं को, भगवान हृदय में पहुँच करके विधनोति सुहृद सता, क्योंकि भगवान हमारे सुहृद हैं। कैसे सुहृद हैं? सुहृद, सुहृद मैंने क्या, हमारा सब समय भला करने वाले सदबंधु हैं। जैसे यदि हमारा कोई बंधु है, बिना कहे हुए बंधु का उपकार करता है, कहने की जरूरत नहीं है, बंधु पर विपत्ति आई तो क्या करेगा, अपने आप कहे बिना उसके भला के लिए काम करेगा। वैसे कृष्ण हमारे साक्षी हैं ना, बंधु हैं, दो सखा हैं ये, इसलिए देखते हैं ये संसार में डूबा हुआ है, कर्म फल भोग रहा है, बड़ा दुखी है, इसलिए कानों में प्रवेश करके उसके हृदय के जितने, यहाँ तक हृदय रोग को भी दूर कर देते हैं। हृदय रोग माने क्या, काम को भी दूर कर देते हैं, नष्ट प्राय अभद्रेश दूर करते करते करते, अब नष्ट जब हो गए हैं प्रायेशु, प्राय कुछ हैं, कैसे हैं, जैसे धनुर्धर नाम का एक रामानुज का शिष्य है ना, रामानुज के सत्संग से महा डकैत खुखार, उसने कोई पाप ऐसा नहीं जो नहीं किया हो, बड़ा भारी पहलवान और बड़ा भारी गुंडा था, उसके नाम से लोग सब 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 थर थर कांपते थे, तो रामानुज के प्रभाव से साधु बन, तो साधु बन जाने के बाद भी वो क्या करता था, वो एक साधु का लंगोटी या लोटा लेकर के दूसरे के पास में रख दे और उसका गमछा साथ ही उनके यहाँ जा करके रख देता और देखता था कि क्या होता है, वो कहते हमारी शापी कहाँ गई, कहते हैं मेरी शापी कहाँ गई, और वो झगड़ने लगते थे, उसको उसी में आनंद लगता। और पहले वाला तो वो मारपीट दंगा, वो लोगों को मारना, डकैती डालना, कार्ड डालना, ये तो नहीं कर रहा, किंतु ये तो उसका स्वभाव है ना, ये कैसे जाएगा, इसलिए अदल बदल कर देना ये करता था। जैसे एक सांप है नारद जी के का वो शिष्य बन गया, तो वो एकदम साधु बन गए, तो लोग उसे आ करके तंग करते थे, उसको पकड़ लेते क्योंकि काटता तो था नहीं, और उसको पत्थर मारते हैं, ये ऐसा करते हैं, लकड़ी से ऐसा करते हैं, बड़ा तंग आ गया गुरु, जिसका गुरु जी आपने ऐसा हमको कहा जो अहिंसा व्रत अवलंबन करो, मैं किसी को काटता नहीं और हमको ये तंग करते हैं, तो मैंने ये कब कहा था, ये तुम डराना धमकाना भी नहीं, अंततः डराना धमकाना तो चाहिए, तो तुम जब ऐसे कर देना बस, अब कोई पास नहीं आए, तो ये स्वभाव सहजी नहीं जाता, किंतु धीरे धीरे धीरे, इसलिए कहते हैं नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु, अभद्र तो तुम्हारा नष्ट हो गया किंतु अभी उसका गंध है तुम्हारे अंदर में, और उस समय में नित्यम भागवत सेवाया, उस समय नित्य भागवत की सेवा करो, कौन, श्रीमद् भागवत, कैसे करो, भागवत के मुख से, भागवत माने वैष्णव, कौन भागवत, वैष्णव भाई, मध्यम अधिकार भी अब पार करने जा रहे हैं, अनुभूति है भजन की, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है और भगवत भजन की अनुभूति है, और गुरुमुख से उन्होंने बहुत श्रवण किया है, उनके मुख से, ऐसे भागवत के मुख से भागवत सुनो, जिसका सब कुछ नष्ट होने पर सारी संपत्ति भी चित्त एकदम शांत स्थिर है, विश्व की कोई संपत्ति मिलने पर उनका चित्त उल्लसित नहीं होता है, उनके कोई निंदा करे तो भी, प्रशंसा करे तो भी उनको कुछ आता जाता है, सब समय भगवत रस में डूबे हुए हैं, भगवत भक्ति में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों के मुख से भागवत सुनने से उसका फल होता है, ठीक, ऐसा नष्ट अब होने आ जा रहा है भगवान की सेवा से, भागवत की सेवा से, भगवत उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोकों से, ब्रह्मा इत्यादि के श्लोकों से, जिनकी सब समय स्तव स्तुति होती है, ऐसे जो उत्तम श्लोक भगवान हैं उनके प्रति भक्तिर भवति नष्टिकी, नष्टिकी भक्ति होगी, ते नष्ट की भक्ति होने के बाद में तथा उस समय में रज तम जितने भाव हैं, काम लोभ क्रोध इत्यादि जितने भी हैं, वो रहने पर भी अनाविद्ध सांप का विष का दांत निकाल जाने पर, जैसे उसका काटने पर भी फल नहीं होता, ऐसे इसके काम क्रोध लोभ मद मोह भी ऐसे चले जाएंगे, फिर उसका फल वैसा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं फिर सत्य स्थिति प्रसिद्धति, फिर अंत में सत्य में, सत्य माने शुद्ध सत्य में, अर्थात तो वही जो जिसको कहते हैं सिद्ध शरीर, उसकी स्थिति हो जाती है। यहाँ आने के बाद में तब गोपी भाव और सिद्ध शरीर, और जो आ गया जिसको टट्टी होकर के भी उसको साफ करने का, शौच करने का भी अकल नहीं, और उसको गोपी भाव दे दिया और मरे, इसलिए अधिकार के अनुसार में ये सब चीज़ें होंगी। तब फिर बतलाएंगे तत्तेनुकंपा, कैसे चित्ता नाविद्ध रहेगा वो कल बतलाएंगे, आज यहीं तक रहेंगे। वंचा कल्पतरु मुक्तः।